إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں اولاد کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ بچوں میں عام طور سے کچھ برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، چاہے وہ گھر کے غلط ماحول کی وجہ سے ہو یا اسکول میں سیکھی ہوئی ہوں یا پڑوس کے گھروں میں جانے کی وجہ سے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے وہ چیزیں پیدا ہوئی ہوں. یہ کیا عادتیں ہیں تفصیل سے ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا، اور والدین کی سرپرست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کی نگرانی کرے تاکہ یہ برائیاں جو بچوں میں پیدا ہوتی ہیں ان برائیوں کو وہ دھیان دے، ان برائیوں پر دھیان دے اور بچوں سے ان کو نکالنے کی کوشش کریں، جس میں ناچ گانا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا وغیرہ وغیرہ بہت ساری صفات ہیں جو بچوں میں پیدا نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ بچپن میں چیزیں اگر مزاج کا حصہ بن جائیں تو بعد کی زندگی میں بچپن کا چھوٹا جھوٹ بڑا جھوٹ بن سکتا ہے. اسی طرح سے بچپن کی چھوٹی چوری بعد میں جانے کے بعد میں بڑی چوری اور اس سے زیادہ دور تک جا سکتا ہے. اس لیے بچوں کو بچپن میں ان کی نگرانی کرنا چاہیے اور برائیوں سے ان کو صاف کرتے رہنا چاہیے، ان کی غلطیوں پر ان کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اصلاح بچوں کی اگر کرنا ہے تو اس سلسلے میں ہم کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. بچوں کی اصلاح ایک بہت ہی نازک کام ہے، اس لیے کہ بچے نازک مزاج ہوتے ہیں اور بہت حساس سینسٹیو ہوتے ہیں. ہمارے سلوک میں، ہماری تربیت میں تھوڑی سی غلطی بھی ان کے مزاج میں بگاڑ اور خرابی یا کمزوری پیدا کر سکتی ہے. بچپن کا بہت زیادہ لاڑ پیار بچوں کو خراب کر سکتا ہے، اسی طرح سے بچپن کا بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ اور اس طرح سے جو معاملہ ہوتا ہے یہ بھی بچوں کے مزاج کو خراب کر سکتا ہے. اس لیے ایک بیلنس اور ایک اعتدال اور میان روی اس میں ہونا بہت ضروری ہے. اور کچھ باتیں جو بچوں کے لیے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہیں اور کچھ باتیں جو بچوں کی اصلاح میں بہت ہی مفید اور معاون ثابت ہوتی ہیں، آج کے درس میں ہم کچھ نکات ایسے دیکھیں گے جن سے بچوں کی تربیت میں بہت ہی فائدہ ہوتا ہے، اور جن چیزوں کا خیال رکھنا، جن چیزوں کے سلسلے میں ہمارا اپنا خود حساس سینسٹیو ہونا یہ تربیت میں مفید اور زیادہ بہتر تربیت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، بچوں کے ساتھ بنیادی طور پر نرمی اور رحم کا سلوک ہونا چاہیے. بچے مجرم نہیں ہیں، اگر وہ غلطی کرتے بھی ہیں تب بھی وہ مجرم نہیں ہیں، اور ان کی غلطیوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا ان کو تجربہ نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ سیکھے ہوئے نہیں ہیں، ان کے جو جی میں آیا وہ کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور بہت ساری چیزیں جن کو لوگ غلط کہتے ہیں یا بڑے غلط کہتے ہیں، بعض اوقات بچوں میں ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے، بچوں میں ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے، اور بڑے بچپن میں بھی وہ چیزیں کر چکے ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کو وہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہیں. اس لیے بچوں کی بعض غلطیوں پر ان کے ساتھ بڑے سختی کا سلوک کرتے ہیں، اور یہ سختی بعض اوقات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس سے بچوں کے اندر بہت ساری دوسری کمزوریاں برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں. بچوں کے ساتھ بنیادی طور پر رحم کا اور نرمی کا سلوک ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے مزاج میں اگر نرمی کے ساتھ ان سے سلوک کیا جائے تو ان کے مزاج میں قوت پیدا ہو سکتی ہے، شفقت وہ بھی سماج کو دینے والے بنیں گے. اگر اولاد کے ساتھ نرمی کا، محبت کا، شفقت کا، رحم کا سلوک کیا جائے تو یہ ان کے مزاج میں بہت ہی بہترین چیز پیدا کرتا ہے، یہ ان کو خود دوسروں کے ساتھ محبت سے، نرمی سے، اخلاق سے، رحم سے جینا سکھاتا ہے۔ اگر والدین کی طرف سے سختی آئے تو بہت ممکن ہے یہی چیز دیکھ دیکھ کر وہ سیکھ لیں، اور بچپن میں چونکہ کمزور ہیں تب تو ایسا کچھ بھی نہ کریں، لیکن بعد میں جب بڑے ہو جائیں تو وہی چیز جو والدین سے انہوں نے سیکھی تھی، وہی سختی جو والدین سے دیکھی تھی، وہی چیز یا تو ان کے اندر ظلم کا مزاج پیدا کر دے، یا پھر ان کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس اور ایک ڈر کا مزاج پیدا کرے۔ دو میں سے ایک ہوتا ہے۔ جن بچوں کے والدین ان کے ساتھ بہت سختی کا سلوک کرتے ہیں، ان میں دو میں سے ایک بات پیدا ہوتی ہے، یا تو والدین کی سختی کو وہ خود سیکھ لیتے ہیں اور اپنی اولاد کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی اسی سخت مزاجی سے پیش آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ والدین کی سختی سے ڈر کر ان میں ہمیشہ ڈرپوک پن پیدا ہو جاتا ہے، وہ ڈرپوک ہو جاتے ہیں، اور ڈرپوک ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کر تو نہیں پاتے ہیں لیکن پھر مکر و فریب کرنے والے بنتے ہیں، چال بازی کرنے والے بنتے ہیں۔ تو یہ دو میں سے ایک باتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، جو کہ دونوں بھی خراب ہیں، نہ ظالم بنانا ہے نہ مکار بنانا ہے، بچوں کو لوگوں کے ساتھ مل جل کر پیار محبت سے اخلاق سے رہنے والا ہم کو بنانا ہے، تاکہ وہ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ان کو بھی خوش کر کے جینے والے بنیں۔ ایک اچھا سماج ایسا ہی ہوتا ہے جس میں ہر انسان خود اپنی زندگی میں خوش ہو اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کرے جو ایک اچھے انسان کو کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں والدین کو نرمی اور رحم کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہاں نرمی سے مراد غلطیوں کو نظر انداز کرنا نہیں ہے، یہاں رحم سے مراد یہ نہیں ہے کہ بچے کی بد اخلاقی پر بھی اس کے ساتھ میں کوئی اس کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ عام حالات میں بچوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ والد صاحب گھر میں آئے اور والد صاحب ایک دم ہٹلر ہیں، اب بچے کھیل رہے تھے، آپس میں کھیل رہے تھے، اب بچے یہاں سے وہاں، کوئی کچن میں بھاگ گیا، کوئی پلنگ کے نیچے جا کے چھپ گیا، کوئی ایک دم شریف بن کے بیٹھ گیا، بات ہی نہیں کر رہا ہے، سارا گھر ایک دم چپ، اور بیوی بھی متک رہی ہے کہ آ گئے اب دیکھو مصیبت آئی۔ تو ایسا نہ ہو، ماں کا بھی حال نہ ہو کہ بچے جب بھی کچھ غلطی کریں شوہر نے ڈانٹ دیا بیوی کو، اب بیوی کو کوئی ملا نہیں، بچہ تھوڑی سی غلطی کیا تھا تو بیوی نے، ماں نے بچے کی خوب دھلائی کر دی، بچے کو بھی نہیں سمجھ میں آتا ہی کیا ہوا، کیا غلطی مجھ سے ہو گئی جو اتنی پٹائی میری ہوئی ہے۔ تو بچوں کے ساتھ میں نرمی کا سلوک ہو، والدین جب گھر میں ہوں تو بچوں سے عام حالات میں شفقت کے ساتھ پیش آئیں، غلطی پر ٹوکنا، ڈانٹنا، پیٹنا سب اپنی جگہ بجا ہے، سب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، عام حالات میں بچوں کے ساتھ نرمی کا سلوک ہونا چاہیے۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ والد صاحب کو ٹائم نہیں ہے، اب آفس جاتے ہیں، آفس سے آتے ہیں، یہی ان کی زندگی کا روٹین ہو چکا ہے، بچہ قریب آئے، آفس کی فائل ہے، کام کر رہے ہیں، آفس کا اوور ٹائم ہے، باس نے بہت ڈانٹا ہے آفس کے اندر اور کل تک کام پورا کر کے دینا ہے، بچہ والد صاحب کے پاس آ رہا ہے اور والد صاحب کے گال پہ بوسا دینے کی کوشش کر رہا ہے، والد صاحب ڈھکیل دیا اس کو، کیا کر رہا ہے، کام کر رہا ہوں، دکھائی نہیں دیتا ہے، چلے یہاں سے بھاگ جائیں۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ والد سے محبت کی وجہ سے آیا ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا غلط اثر پڑتا ہے، بچہ گر گیا نیچے، چاہ رہا ہے کہ اس کو آ کے کوئی اٹھائے، بچے خود سے اٹھ سکتے ہیں لیکن اٹھتے نہیں، کیوں نہیں اٹھتے ہیں، اس لیے نہیں اٹھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ والدین کی شفقت اور محبت ان کو ملے۔ بعض اوقات بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ ان کے ساتھ محبت شفقت کا سلوک کریں، گود میں لیں، ان کو قریب کریں، ان کا سر سہلائیں، ان کو گال پہ بوسا دیں، تو والدین سے شفقت چاہتے ہیں، اس لیے بے وجہ روتے ہیں، اب والدین بجائے ان کو شفقت دینے کے اور پیٹتے ہیں کہ کیوں رو رہا ہے۔ اب بتائیے، یہ بچے کو پڑھے بغیر بچے کو پڑھا نہیں سکتے ہیں، اس بات کو آپ یاد رکھیں، آپ بچے کو پڑھے بغیر اس کو کچھ سکھا نہیں سکتے، بچے کو پڑھنا ضروری ہے کہ اس کی کیا نیڈ ہے، اس کو ضرورت کیا ہے۔ ایک بچے کو کھانا نہیں چاہیے اور رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ماں باپ اس کو پیار کریں، ٹھیک ہے، اب اس کو کھانا چاہیے، نہیں چاہیے، یہ چاہیے، نہیں چاہیے، سب لسٹ اس کو گنا دی، کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، کھانا چاہیے، چاکلیٹ چاہیے، آئس کریم چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے، پھر دھلائی چاہیے، اس کو اس کی دھلائی ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں چاہیے، خام خر ہوتا ہے، اس کو بولنے نہیں آتا ہے کہ مجھ کو محبت چاہیے، اس کو نہیں سمجھتا ہے، اس کو بولنے نہیں آتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ والدین اس سے شفقت کا سلوک کریں، अगर माँ बाप उसको सीने से लगाए, उसको प्यार करें, क्या बात है, प्यार मोहब्बत की बात उससे करें, कुछ उसका जहन फेर दें। बच्चों का मामला इतना आसान होता है, अगर माँ बाप खुद सुलझे हुए हों तो बच्चों को सुलझा सकते हैं, माँ बाप खुद उलझे हुए हों तो बच्चों को कभी नहीं सुलझा सकते। जो खुद कंफ्यूज हो दूसरे को मुतमईन कर सकता है? नहीं कर सकता है। माँ बाप अगर बच्चों को उनकी उनका ध्यान डाइवर्ट करना सीख लें, माँ बाप का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। बच्चा है, रो रहा है, आप उसको किसी चीज की तरफ उसका ध्यान आप दूसरी तरफ ले जाएं, वो रोना भूल जाता है, वो शरारत करना भूल जाता है, वो जिद करना भूल जाता है। आप उसका ध्यान डाइवर्ट करना सीखें, ये हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन 80% आपका काम हो जाएगा अगर आप ये सीख लें कि बच्चे का ध्यान अगर एक चीज में अटका हुआ है, अगर आप उसका ध्यान दूसरी तरफ ले जाते हैं, किसी ऐसी चीज की तरफ जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, उसको अच्छी लगती है वो चीज, अगर वो गलत ना हो, उस बच्चे का ध्यान उस तरफ आप ले जाएं, प्यार मोहब्बत से उससे बात करें, वो बच्चा अपने आप दूसरी चीज में मशगूल हो जाएगा, आपका 2 मिनट आपके आधे घंटे को खराब करने से आपको बचाएगा। ये माँ बाप के लिए बहुत सोचने और सीखने की चीज है। माँ बाप का पहला उसूल यह है कि बच्चों के साथ जब सुलूक करें उनकी तरबियत में, तो उनको नरमी और मोहब्बत और शफकत का सुलूक दें। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कब्बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन इब्न अली व इंदहु अल अक्रअ इब्न हाबिस अत तैमी जालिसन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आपकी बेटी के बेटे हज़रत फातिमा के बेटे हसन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, छोटे बच्चे थे, आपने आपके पास थे हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, छोटे बच्चे थे, 6 साल के होंगे, तो आपने उनको चूमा, प्यार किया, और आपके पास करीब ही में बैठे हुए थे एक दूसरे शख्स जिनका नाम था अक्रअ इब्न हाबिस अत-तैमी। फ़क़ाल अल-अक्रअ, आपको जब देखा इन्होंने के छोटे बच्चे को प्यार किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने कहा इन अली आशरतम मिन अल-वलदी मा कब्बलतु मिनहुम अहदन, मेरे 10-10 बच्चे हैं लेकिन एक को भी कभी ऐसा मैं चूमता और प्यार करता नहीं हूं। फनज़रा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और आपने कहा थुम्मा क़ाल मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सुलूक था, इसको इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। हमारा हाल क्या होता है, बच्चा हमारी माने तो प्यार मोहब्बत से, और बच्चा ना माने तो पिटाई, बेवजह हम कभी बच्चे से मोहब्बत नहीं करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा काम किया हमारा, कितना अच्छा बच्चा है, थोड़ी देर के बाद कुछ शरारत किया, इससे बुरा बच्चा कोई नहीं है, लेकिन कभी बैठा है बच्चा, कभी गोद में लेके उसको प्यार करेंगे। बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो सोच समझ के बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उसको बच्चों की तरबियत का हिस्सा मान के बच्चों से मोहब्बत करते हैं। आप देखिए, इसको याद रखिए, ये बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों की तरबियत, बच्चों की इस्लाह और बच्चों की तरक्की का जरिया है कि माँ बाप उनके साथ मोहब्बत का सलूक करें। जो बच्चे बचपन में माँ बाप की मोहब्बत से महरूम रहते हैं, बाद में उनके लिए जिंदगी में कोप अप करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को बचपन में शफकत दी जाए, ताकि उनके किरदार में, उनकी पर्सनैलिटी में किसी किस्म का कोई नक्स और कमी ना हो, कोई कमी उनके अंदर ना हो। तो ये पहली बात याद रखना जरूरी है कि बच्चों से रहम और नरमी का सलूक किया जाए। नंबर 2, बच्चों को कुछ अता करें, तो अब एक से ज्यादा बच्चे हैं। अब बात औकात ऐसा होता है कि 2 बच्चे हैं, एक बहुत पढ़ने में ज्यादा होशियार होता है और दूसरा बच्चा बेचारा पढ़ने में तो होशियार नहीं होता है, घर के काम करने वाला होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है इसको सब पढ़ाते हैं टीचर, घर वाले, क्लास के एक्स्ट्रा क्लास वाले सब पढ़ाते हैं, लेकिन बेचारा आगे बढ़ नहीं पाता है। अब वालिदैन के नजदीक एक जो है वो घर का फ्यूचर हीरो होता है और दूसरा बच्चा जो है वो बेचारा कुछ काम का नहीं, घर में एक बोरिया है, बस वैसे ही रहता है। तो घर वाले जो हैं एक बच्चे के साथ में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और दूसरे बच्चे के साथ में बहुत गलत ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी मेहमान घर पे आया, ये हमारा बच्चा है देखो, ये बहुत अच्छा है। वो मेहमान पूछता है ये कैसा है, ये इसका छोड़ो, इसका क्या बोलना है, इसके बारे में तू बात नहीं करना है, ये तो बस खेलता ही रहता है, ये तो बस शरारती करता रहता है, ये तो बस ऐसे ही करता रहता है, ये कुछ काम का नहीं, कुछ बनेगा नहीं, कुछ मानता नहीं। इस तरह से जो है बच्चों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों के साथ में नाइंसाफी या उनके साथ में फर्क करना बाद औकात नुकसान देता है, बल्कि अक्सर औकात नुकसान देता है। ये नुकसान उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाता है जब गिफ्ट्स में नाइंसाफी हो, जब आता में नाइंसाफी हो। मसलन एक बच्चे को कुछ ले आए, दूसरे बच्चे को नहीं लाए, एक बच्चे की पसंद जो थी उसको लेकर आ गए घर पे, लेकिन दूसरे बच्चे को वो नहीं दिया जो उसकी पसंद है। इससे क्या होता है, इससे दो चीजें पैदा होती हैं। नंबर एक, वालिदैन से बगावत का जज्बा इसमें पैदा होता है कि अच्छा मुझको नहीं देते हैं, उसको देते हैं, ठीक है, यानी ये जुल्म है तो जुल्म का बदला लिया जाएगा। अब बच्चे के जहन में जुल्म का बदला लिया जाएगा कि मिजाज आ गया वालिदैन के मुकाबले में। नंबर दो, उसको देते हैं मुझको नहीं देते हैं, अच्छी बात है, अब उसके दिल में जिसको दिया गया है उससे हसद और उससे दुश्मनी और बुग्ज का मिजाज पैदा होता है। तो घर की बुनियादें कमजोर होती हैं जब बच्चों में एक को दिया जाए और एक को नहीं दिया जाए। वालिदैन को चाहिए कि जब हदिया दें तो दोनों को दें, वालिदैन को चाहिए कि जब हदिया दें, गिफ्ट दें या कुछ लाएं घर में, तो इसको भी लाएं, उसको भी लाएं, दोनों को लाएं, या फिर न लाएं लेकिन लाएं तो दोनों को लाएं, दोनों की पसंद की चीज लाएं। आमिर कहते हैं कि मैंने नौमान इब्ने बशीर रदी अल्लाह तआला को मेंबर पर कहते सुना, अतानी अबी अतियतन, मेरे वालिद ने मुझको एक हदिया दिया, अतिया दिया। फकालत अमरा बिन्तु रवाहा, अमरा बिन्त रवाहा उनकी वालिदा हैं, उन्होंने कहा, ला अर्दा हत्ता तुश्हिदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी वालिदा कोई बात पसंद नहीं आई कि एक बेटे को दिया है और एक बेटे को नहीं दिया, दूसरे बेटे को नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि जब तक कि आप इस आता पर, इस गिफ्ट पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह न बना ले, तब तक कि मैं इससे राजी नहीं रहूंगी। जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, बोलो मैंने ऐसा दिया फुलां को, एक बेटे को मैंने ऐसा दिया, अगर आप राजी हो जाएं ठीक, राजी नहीं होंगे तो उसके बाद बात। फअता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नुमान इब्न बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, इन्नी अअतीतु इब्नी मिन अमरा इब्न रवाहा अतियतन, मैंने अमरा बिन रवाह से जो मेरा बेटा है उसको एक हदिया दिया, यानी उनकी कई बीवियां थी तो एक बीवी से जो बेटा था उनको हदिया दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, फअमरतनी अन उशीदका या रसूल अल्लाह, तो मेरी बीवी ने अमरा बिन रवाह ने मुझसे कहा कि मैं आपको भी इसमें गवाह बना लूं कि आपकी निगरानी में करूं, आप राजी तो राजी ठीक। قال اعطيت سائر ولدك مثل هذا, आपने पूछा तूने अपने सारे बेटों को इस तरह से दिया है, जो एक बेटे को दिया है वो सारे बेटों को दिया है, सब बच्चों को दिया है। قال لا, कहा कि नहीं। قال فاتقوا الله وادروا بين اولادكم, आपने कहा अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अपनी औलाद में इनमें आपस में अदल करो, इनमें जस्टिस रखो, इनमें आपस में औलाद में अदल करो, इंसाफ करो। قال فرجع فرد عطيته, वापस लौटे नौबान इब्न बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु और जो हदिया उन्होंने अपने बेटे को दिया था वो वापस ले लिया। इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने किताबुल हिबा में और इमाम मुस्लिम ने अल हिबात में इसको रिवायत किया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि औलाद में अगर एक को अता करता है, दूसरे को अता नहीं करता है, दूसरे को महरूम रखता है, तो ये जुल्म है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें कही, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वादिलु बैन औलादिकुम, और अपनी औलाद में अदल करो। तो औलाद में अदल करना जरूरी है। अदल जहां नहीं होता है वहां पर बगावत और हसद पैदा होता है। जहां पर अदल ना हो, एक को मिला एक को नहीं मिला, अदल नहीं हुआ, तो देने वाले से बगावत होती है और जिसको मिला है उससे नफरत और हसद पैदा होती है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर औलाद में वालिदैन से बगावत का जज्बा पैदा हो और आपस में एक दूसरे से हसद का जज्बा पैदा हो? बताइए, इससे ज्यादा घर की बुनियादें कमजोर करने वाली और क्या चीज हो सकती है। इसलिए औलाद को जब दें तो सब में बराबरी करें। बराबरी का ये मतलब नहीं है कि आपको अगर पीला रंग पसंद है तो आपने सारे घर के जितने बच्चे सबको पीले रंग के कपड़े पहना दिए, ये मतलब नहीं है। ये मतलब नहीं है कि मतलब ये है कि सारे जो बच्चे हैं उनमें एक को दें एक को न दें, ऐसा ना करें। एक को बहुत महंगा कपड़ा लाया और एक को जो है एकदम कमतर किस्म का कपड़ा लाया, अब वो उसको देख रहा है कि इसके कपड़े तो बहुत अच्छे हैं और मेरे कपड़े खराब हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि औलाद में बराबरी होना चाहिए। अता में पसंद बच्चों की हो लेकिन उसमें बराबरी होना चाहिए कि एक को दिया एक को नहीं दिया ऐसा नहीं हो, एक को घटिया एक को आला ऐसा नहीं हो, बल्कि आदल होना चाहिए, सब में बराबरी होना चाहिए। ये बराबरी और ये आदल और इंसाफ सिर्फ चीजों में नहीं बल्कि सुलूक में भी होना चाहिए, सुलूक में भी हो। इससे पहले भी आप ये रिवायत देख चुके हैं, अनस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, काना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुल, एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, फजा इब्न लहू, उसका बेटा आया, फकब्बलहु अजलसहु अला फखिज़िही, उस आदमी ने अपने बेटे को आप प्यार किया, बोसा दिया, चूमा और अपनी गोद में बिठा लिया। सुम जाअत बिन्तु लहू, फिर थोड़ी देर बाद उसकी बेटी भी आई उसके पास, फअजलसहा इला जंबिही, तो उसने अपनी अपने बाजू उसको बिठा लिया, न प्यार किया न गोद में बिठाया बल्कि बाजू में बिठा दिया। قال فهل لا عدلت بينهما, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, فهل لا عدلت بينهما, क्यों तूने दोनों के बीच में इंसाफ नहीं किया, क्यों तूने दोनों में अदल नहीं किया, इसको प्यार किया उसको नहीं किया, उसको गोद में बिठाया उसको नहीं बिठाया, क्यों तूने अदल नहीं किया। एक रिवायत के अल्फाज है, अला अदलत बैनहुम, खबरदार तुझको चाहिए था कि तू उनमें अदल करता, तूने क्यों अदल नहीं किया। फमा अदलत बैनहुम, एक रिवायत के अल्फाज, तूने दोनों में अदल नहीं किया, आपने डांट के कहा। इस रिवायत को इमाम अल बज्जार ने अपनी मुस्नद में और इसी तरह से इब्न अल अराबी ने अपनी मुजम में और इसी तरह से अल हमदानी ने अपनी किताब अल फवाइद में और इमाम अत्ताहाबी ने भी शेख मानी अल आसार में इसको रिवायत किया और ये उन्हीं के अल्फाज हैं। शेख अल अल्बानी ने अस्सहीहा में इसको सही कहा है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए उसमें सिर्फ चीजों का इंसाफ और आदल नहीं है बल्कि उसमें ट्रीटमेंट, सुलूक और रिश्ता और ताल्लुक का भी इंसाफ है। बच्चों के साथ में अदल का मामला करना चाहिए, उनको साइकोलॉजिकली डिप्रिविएशन इसका सुलूक नहीं होना चाहिए, उनको डिप्राइव नहीं करना चाहिए, उनको सुलूक से महब्बत से महरूम नहीं करना चाहिए। बच्चों की बचपन में महब्बत और शफ़क़त से महरूमी उनके किरदार में सुराख पैदा कर देती है, उनके कैरेक्टर में कमी और एक होल पैदा कर देती है, एक वॉइड उनके अंदर पैदा हो जाता है, तो वो कमी का एहसास जिंदगी भर उनको रहता है। वालिदैन के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों से सुलूक में नरमी, शफकत और मोहब्बत और बराबरी का मामला पैदा करें। साइकोलॉजिकल जितने साइकोलॉजिस्ट और जितने भी साइको एनालिस्ट होते हैं इनसे अगर किसी का साबिका हो उससे मालूम किया जा सकता है कि बचपन में बच्चों के साथ अगर शफकत उनको नहीं मिले वालिदैन की, बाद में जिंदगी में अग्रेशन, वायलेंस और बहुत सारी बुराइयां उनके अंदर पैदा हो जाती हैं, उनके अंदर बहुत सारी लतें और बहुत सारी खराबियां यानी ड्रग एडिक्ट और इस तरह की सारी चीजें उनमें पैदा होती हैं। तो ये बच्चों के साथ सुलूक के बारे में उसूल है कि दो बच्चे अगर हैं या उससे ज्यादा हैं तो उनमें अदल का सुलूक होना चाहिए। बच्चे आपको देखते हैं, मिसाल के तौर पर सबसे आखिरी बच्चा, छोटा बच्चा आपको बहुत पसंद होता है, क्यों? इसलिए कि बहुत शरारती होता है और घर का, घर की आंखों का तारा होता है। अब सब के सब मिलके जो है उसको देख रहे होते हैं और बड़े जो बच्चे होते हैं वो बीच में आते हैं, मुझको भी देखो। आपने इसको कभी पढ़ा है क्यों ऐसा करते हैं? छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो भाग रहा है, वो चलना सीख रहा है। अब बड़ा बच्चा भी है, सामने देख रहा है कि वो चलना सीख रहा है, पूरे घर के लोग उसको मुस्कुराते हुए देख रहे थे, वो कैसा चल रहा है। अब ये बीच में आता है, उसको लेने की कोशिश करता है, मुझको भी देखो। अब सब मारपीट के उसको बाजू हटाते हैं। बाजू हटाए, बीच में क्यों आया तू? अब उसको उसको नहीं आता है बोलना कि मुझको भी देखो, उसके दिल के अंदर चोट पहुंचती है कि पहले बचपन में मैं था, मेरी जगह ये ले रहा है, मेरी जगह ये ले रहा है, मेरी सीट मुझसे छीन रही है, सबका ध्यान पहले मेरे ऊपर था, अब दूसरे के ऊपर हो गया। अब उसको उससे नफरत पैदा होती है, अकेले में कभी उसको मारता भी है, वो अकेले में उसको मारता भी है, माँ बाप को, माँ बाप से नफरत भी उसको पैदा होती है। फिर वो ऐसी ऐसी चीजें करने लगता है, कभी ये फोड़ दिया जानबूझ के, कभी वो फोड़ दिया जानबूझ के, ताकि उसको और पीटा जाए, उसके अंदर और जिद पैदा हो जाती है, और उसके अंदर रिबेलियन पैदा हो जाता है, बगावत पैदा होती है। वो जो नहीं करना है वो करना शुरू करता है, सिर्फ किस लिए, किस लिए करता है, ताकि माँ बाप उसको शफकत दें। अगर आप उसको भी, छोटे बच्चे को भी प्यार करें, और बड़ा अगर आपको दिखाई दे रहा है कि वो देख रहा है आपको, आपका इधर आ बेटा, इधर आ जा, तू भी इधर आ जा, उसको आपने गोद में ले लिया, अब बताइए उसको कभी एहसास नहीं होगा कि हाँ अब मैं नंबर टू हो गया? उसको एहसास नहीं होगा, उसको लगेगा आज भी मेरा वही मामला है जो बचपन में था, आज भी मेरे माँ बाप मुझको, मुझ पर ध्यान देते हैं, मुझको प्यार करते हैं। ये चीज होना जरूरी है, इसको याद रखिए। तो ये सुलूक में इंसाफ है, आप हर बच्चे पर ध्यान दें, आप हर बच्चे से मोहब्बत करें, किसी बच्चे को ऐसा महसूस ना हो कि अब मेरी मोहब्बत में कमी आ गई है, मेरे लिए वालिदैन की मोहब्बत में कमी आई है, बल्कि हर बच्चे को ये लगे कि माँ बाप मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। हर बच्चे को ऐसा लगना चाहिए, हर बच्चे को ऐसा लगना चाहिए। नंबर चार, बच्चों की जायज जरूरियात में फराहमी, ये भी एक उसूल है जो बच्चों की तरबियत में बहुत ही मुअसर और बहुत ही असरअंदाज चीज होती है। यानी बच्चों को जो चाहिए, जो वाजिबी चीजें हैं, जो बच्चों को दी जानी चाहिए, वो बच्चों को देना। ऐसा नहीं हो कि बस जिद में बच्चा चाह रहा है। अभी मिसाल के तौर पर आपने बच्चे से कहा था फुला चीज फुला कमरे में से ले आओ, बच्चा जिद कर रहा था, नहीं लाया। अच्छा, अब आपने क्या किया, ठीक है बेटा तू मेरी नहीं मानता है ना, हाँ मैं भी देख क्या करता हूं। बच्चे को खाने के लिए कुछ चाहिए, बच्चे को कोई चीज स्कूल के लिए चाहिए, स्कूल में कुछ मंगाया है टीचर ने, अब वालिदैन ये करे नहीं, तूने मेरी बात माना था, नहीं माना था, अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। बच्चे को सॉक्स चाहिए स्कूल के लिए, फट गए सॉक्स। बच्चे को कोई और चीज चाहिए स्कूल के लिए, पेन चाहिए उसको, या कुछ और चीज चाहिए, या घर में कुछ खाने के लिए थी, बच्चे का बहुत दिल कर रहा है, केक खाने दिल कर रहा है, चॉकलेट खाने दिल कर रहा है, बच्चों को बिगाड़ना भी नहीं चाहिए कि सुबह से शाम तक केक ही खाता रहे हो, ये चॉकलेट ही खाता रहे और दांत बाद में सारे के सारे उसके सड़ जाएं, ये भी नहीं हो, लेकिन उसका जी कर रहा है कोई चीज खाने के लिए। अब आप जबरदस्ती घर में वो चीज रखी हुई है, स्टैंड के ऊपर रखी हुई, बेचारे का हाथ नहीं जाता है, आपसे कह रहा मुझको चाहिए, फिर अच्छा अब मेरी जरूरत पड़ी क्या, अब आप भी पूरे यानी उसको ब्लैकमेल करने लगे, आप भी उससे बदला लेने वाले, आप ट्रेन कर रहे हो उसको, बदला लेते हैं, कमजोरी का फायदा कैसे उठाना, आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो अभी। अब अच्छा मेरी बात नहीं मानता, ये चीज नहीं किया तुमने, आप देख सामने उसको थोड़ा और सामने करके रखूंगा, दूंगा नहीं। तो ये जो चीज है ये बच्चों को तरबियत देना है कि कैसे बदला लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों की जायज जरूरियात हैं, बच्चों की जायज जरूरियात हैं, जो उनको लगता है वो देना चाहिए, चाहे वो खाना हो, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो और जो भी चीजें उनकी हैं, उनको देना चाहिए जो उनको चाहिए। सारे जो है घर के अतराफ के सब बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, आपका बच्चा है वो नहीं खेलने दे रहे आप उसको, सब बच्चे खा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को नहीं दे रहे हो, आप अपने बच्चे को महरूम कर रहे हो चीज से। अगर वो चीज जायज है, उन जायज जरूरियात की फराहमी ये जरूरी है। तो बच्चों की गिजा का ख्याल रखें कि बच्चा क्या खा रहा है, बच्चा क्या खा रहा है उसके खाने का ख्याल रखें, उसको जितना न्यूट्रिशन चाहिए दें, उसको जितना खाना चाहिए दें। अब बेचारा बच्चा भूख लगी है मांग रहा है, आपने रोक लिया उससे, नहीं कितना खाएगा, पूरी हंडी खा जाएगा, पूरा नहीं दे रहे उसको खाना, उसको भूख लगी है, खेल के आया बाहर से, तो नहीं नहीं इतना नहीं खाना है, तकवा सीखना है। अच्छा तकवा उसको सिखा रहे हैं, आपको तकवा नहीं सीखा उसको सिखा रहे तकवा, कि नहीं खाना है ज्यादा, रोक दिया उसको खाने से। या कोई अच्छे कपड़े पहनना चाह रहा है, नहीं नहीं खराब कर देगा धोने कपड़े, वो नहीं पहनने दे रहे आप उसको, दूसरे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बाहर बैठे हैं खेल रहे हैं आंगन में, आप अपने बच्चे को नहीं पहनने दे रहे, या कोई ड्रेस उसको चाहिए, कपड़े चाहिए उसको, तो उसको नहीं आप दिला रहे अच्छे कपड़े। तो इस तरह से अगर उसकी जायज जरूरियात जो है, उसकी नीड्स, बेसिक नीड्स अगर कुछ हैं, अगर आप उसको नहीं देते हो तो बच्चा चोरी सीखेगा, झूठ बोलना सीखेगा और छीनना सीखेगा और आपको धोखा देना सीखेगा। अगर आप उसको कुछ चाहिए, खिलौना चाहिए मसलन, आप उसको नहीं दे रहे हो, कुछ गलत नहीं है देने में, देना चाहिए उसको अगर ऐसी जरूरत है तो। अब अगर आप उसको नहीं दे रहे हो, अब वो स्कूल में से, पड़ोस में से, हो सकता है दुकान में जाके चोरी करके लाए, हो सकता है चोरी करे। तो आपका काम है कि जो जायज जरूरियात हैं वो उनको दें, और कभी नहीं भी दें, कभी नहीं भी दें, ये आपको बैलेंस रखना जरूरी है। कि गैर जरूरी चीजों के बारे में आप समझाएं कि बेटा ये चीज तुमको ली है ना, अब ये नहीं लेना है, ये चीज नहीं है, हर चीज थोड़ी लेते हैं, देखो हमको भी ये चीज चाहिए लेकिन हम नहीं लेते हैं। उसको समझाएं, उसको एजुकेट करें, आप उसको एजुकेट करें, उसके साथ आप शेयर करें, बात करें उससे, उसको आप एकदम है बच्चा है ऐसा नहीं करें, आप उसको उसको समझाएं। बहुत सारी बातें उसको समझती हैं, वो आपको समझा भी सकता है, बहुत सारी बातें बच्चों को समझती हैं। बच्चे आपको कहते हैं हाँ मुझको मालूम है आपने इसलिए ऐसा किया, बच्चे भी कभी आपको ऐसा कहते हैं। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बातें बहुत आसानी से समझते हैं, कुछ बातें बहुत मुश्किल होती है उनके लिए समझना। तो आप उनको जो समझ सकते हैं समझाएं और उनकी जायज जरूरियात पूरी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफा बिल मरइ इस्मन अन युदईअ मन यकूत, आदमी के गुनाह के लिए इतना ही काफी है कि जिन लोगों की गिजा और रिस्क की जिम्मेदारी उस पर थी उसको जाय कर दे, या तो रिस्क को जाय कर दे या जिम्मेदारी को जाय कर दे। तो औलाद की जिम्मेदारी है उनका खाना, उनका लिबास, उनकी रिहाइश वगैरह, उनकी दवाई, ये चीजें वालिदैन पर जिम्मेदारी है। अब आदमी के लिए बहुत ही गुनाह की बात है कि अल्लाह ने इनकी जिम्मेदारी उस पर डाली है और वो जिम्मेदारी ना निभाए। बच्चे बीमार हैं, दवाई का इंतजाम नहीं, बच्चों को भूख लगी है, खाने का इंतजाम नहीं, यह और बात है कि अगर अल्लाह ताला किसी के ऊपर गरीबी डाले आजमाइश के तौर पर, यह और बात है। लेकिन वालिदैन को चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने असबाब मुयस्सर किए हैं तो फिर असबाब के होने के बाद बच्चों के साथ जुल्म का मामला न करें और लापरवाही का मामला न करें। बाज़ औक़ात वालिदैन लापरवाही करते हैं, बच्चा कमजोर हो रहा है, उसके लिए गुज़ा की जरूरत है, वालिदैन लापरवाही करते हैं, नहीं देते हैं, उसको डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है, नहीं ले जाते हैं। तो बच्चों की निगरानी करना ये जरूरी है, उनकी गिज़ा और उनकी हिफाजत, उनकी जिस्मानी तरबियत, नशोनुमा, इसकी निगरानी करना जरूरी है। कफा बिल मरई इस्मन अन युदईअ मन यकूत, आदमी के गुनाह के लिए इतना ही काफी है कि वो जिन लोगों के रिस्क की जिम्मेदारी उस पर थी उसको जाय कर दे। इमाम अहमद, अबू दाऊद, हाकिम और इमाम अल बैहकी ने सुनन अल कुबरा में इसको जिक्र किया, और यह हदीस हसन है, शेख अल अल्बानी ने सैयद जामे सकीर में इसको जिक्र किया है। जायज जरूरियात की फराहमी का यह मतलब नहीं है कि आप बच्चों को आदत डाल दें कि हर चीज जिद करो मिल जाती है, हर चीज रोने से मिल जाती है, हर चीज सताने से मिल जाती है, या हमको डिस्टर्ब करोगे तो हम कुछ ना कुछ तुमको दे देंगे ताकि हमारा काम चलता रहे और तुमको आदत डाल देंगे, ऐसा नहीं। बच्चों को किफायत शादी की भी तालीम देना चाहिए, बच्चों को चाहे खाना हो या बाहर चलाई हुई चीजें हो, हर चीज के सिलसिले में किफायत शहरी की तालीम देना चाहिए। किफायत शहरी किसको कहते हैं? किफायत का मतलब होता है थोड़े में काम चलाना, थोड़े में काम चलाना है। मसलन बच्चा खाना खा रहा है, हमको मालूम है ज्यादा नहीं खाता है लेकिन मांगता ही चला जा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, मांग रहे दे रहे, मांग रहे दे रहे, अब खाता है चार लुकमे और लेता है 40 लुकमे, अब पूरा खेल के खराब करके उसने छोड़ दिया, नहीं खाता है। अगली मरतबा ख्याल रखें कि इसका खाना कम है लेकिन ये जाय करता है, उसको बिठा के सिखाएं, बेटा देखो तुमने नहीं खाया ना, ये जाय किया, अगली मरतबा कम मिलेगा। हाँ सचमुच में भूख लगी तो देंगे लेकिन उसको थोड़े में काम चलाना सिखाएं कि बेटा जितना खाना है उतना ही लेना चाहिए, ज्यादा लेके खराब नहीं करना चाहिए, उसको ट्रेन करें। इसी तरह से बच्चा बाहर से आया खेलते हुए, अब्बू चॉकलेट चाहिए, फिर थोड़ी देर गया चॉकलेट खा के आया, अब्बू आइसक्रीम चाहिए, फिर भागते हुए यहां से आया, अब्बू कुछ थम्सअप चाहिए, कोका कोला चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसको चाहिए कि आदत डाल रहे हैं आप? नहीं। बाद औकात वालिदैन को तकलीफ होती है, हाँ जेब में हाथ डाल दिया, लो पैसे जाओ जो खाना है खाओ, बच्चा बाहर गया ऑल फॉल कुछ भी खा के आता है, मालूम नहीं क्या खा रहा है,
हो सकता है एक वक्त के बाद गुटखा भी खाने लगे, हो सकता है, आपको क्या मालूम है। उसके पास जेब में पैसे हैं, कोई दूसरा बच्चा मिल गया जो बिगड़ा हुआ है, अरे तेरे पास इतने पैसे हैं, चल एक चीज आज तुझको बताता हूं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं मालूम। आपने जान छुड़ाने के लिए बच्चे को पैसे दे दिए, आपने चाबी दे दी उसको, जो चाहे ले, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को किफायत शहरी की तालीम दी जाए, थोड़े में काम चलाने की आदत उनको डाली जाए, और बच्चों को चीजों को जाया करने की आदत न डाली जाए। बच्चे जो है चीजों को जाया न करें, उनको बताया जाए कि इतने में काम चलाना चाहिए, थोड़े में काम चलाना चाहिए, पैसा खर्च नहीं करते हैं ज्यादा, को इतना पैसा थोड़ा खर्च करना चाहिए। बच्चों को पैसे दिए ही नहीं जाए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पैसे ही नहीं दिए जाए। क्यों? इसलिए कि आप उनके हाथ में पैसा देने के बाद उनको जजमेंट नहीं है, उनको तजुर्बा नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए, उनको नहीं मालूम है। वो कुछ भी रंग के हिसाब से चुनेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि फुला चीज है इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, इससे पेट के लिए नुकसान होता है। वो बाहर जाके जो है बाजार में से कुछ भी ले आएंगे, आपका आपको उसने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अपने जिस्म के निजाम को खराब कर रहा है। तो आपको चाहिए कि बच्चों को कम खर्च की आदत डालें, बच्चों को थोड़े में काम चलाने की आदत डालें। चीजें बच्चे जाय करते हैं, आप उनको सिखाएं कि बच्चे चीज जाय नहीं करते हैं। आइसक्रीम लिया, थोड़ा सा खाया, बाकी फेंक दिया। फुला चीज ले ली, थोड़ा सा खाया, फेंक दिया। तो इस तरह से बच्चे को अगर आप आदत डालते हो, या बहुत सारी चीजें लाते हो आप, बहुत ज्यादा लाते हो आप, इतना ज्यादा लाते हो कि वो फेंकने में चला जाता है, इतना ज्यादा आपने नहीं लाना है। बच्चों को आदत होती है, अरे अब्बू के पास तो बहुत पैसे हैं, खाओ फेंको एक ही बात है, हमारे पास बहुत है। तो बच्चे को ये आदत नहीं होना चाहिए, बच्चे को आदत ये होना चाहिए कि हाँ इतना थोड़ा लगता है हमको, थोड़े में ही हमको काम चलाना चाहिए। वेस्टेज बच्चे को उसकी तालीम नहीं दी जाए, चीजों के जाय करने की, वेस्ट करने की तालीम बच्चों को नहीं दी जाए। निगरानी की जाए, उनको करेक्ट किया जाए, उनकी सलाह की जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वला तुबद्दिर तबदीरा, खबरदार, वला तुबद्दिर तबदीरा, और इसराफ और फजूल खर्ची बेजा खर्च से बच। वला तुबद्दिर तबदीरा, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, यकीनन वो लोग जो फजूल खर्ची करते हैं, हद से ज्यादा खर्च करते हैं, हदे पार करते हैं, तो ये लोग शैतान के भाई हैं, शैतान के भाई हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान तेरे रब का बड़ा नाशुकरा है, शैतान अल्लाह ताला का नाशुकरा बंदा है। तो इस हदे पार करना ये अल्लाह को पसंद नहीं है, फजूल खर्ची अल्लाह को पसंद नहीं है, फजूल खर्ची नहीं की जाए। जिस चीज की फजूल खर्ची किसको कहते हैं, जिस चीज का खर्च करना, यानी जिस चीज में खर्च करना जायज ना हो उसमें खर्च करना, और जिस चीज की जितनी जरूरत है उससे इतना ज्यादा खर्च करना कि वो नुकसान का सबब बन जाए, जाय हो जाए, वेस्टेज जो है ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो फजूल खर्ची से बचा जाए। हाँ, कंजूसी और फजूल खर्ची दोनों के बीच में चलना चाहिए, एकदम ही बुखल पे नहीं आ जाए आदमी, बल्कि मॉडरेट होना चाहिए, बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, सूरह अल-फ़ुर्क़ान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के नेक बंदे कैसे हैं, वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़तुरू, कि जब वो खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची भी नहीं करते हैं और बुख़ल कंजूसी भी नहीं करते हैं। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, उनका मामला खर्च करने का इन दोनों के बीच में ठीक ठाक बैलेंस होता है, ठीक ठाक होता है, कवामा कायम होता है, एतदाल वाला होता है। तो ये चीज याद रखें, बच्चों को फजूल खर्ची की तालीम ना हो, बच्चों को ऐसा भरम ना हो जाए कि हमारे वालिदैन के पास बहुत पैसा है, हम चाहे वेस्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं हो, उनको डर लगे कि ये वेस्ट करेंगे तो मिलेगा नहीं, ये भी बच्चों में चीज पैदा होना चाहिए। नंबर छह, बच्चों के साथ उनकी तरबियत में, उनकी इस्लाह में और उनके साथ सलूक में हुक्मरानी से परहेज करना। ये क्या है? बेवजह उनको हुक्म देना, ऐसा सलूक करना जैसे बादशाह और गुलाम, बल्कि कैदी का मामला होता है, यानी खामखा अपनी हुक्मरानी ऊपर चलाना, कोई मतलब नहीं, न उनका फायदा है, न उनकी तरबियत है, न कुछ है, बस आपका जी चाह रहा है कि मेरा हुक्म कहीं चले, कहीं चलता नहीं, ऑफिस में घर में चलता नहीं है, अब बाप का ऑफिस में नहीं चलता, माँ का घर में नहीं चलता, अब किस पे चलेगा, बच्चे पे ट्राई कर रहे हैं, खड़े हो जा, बैठा है बेचारा बच्चा, खड़े हो जा, अब क्यों खड़े, चुप खड़े हो गए, बैठ जा, अच्छा बहुत दिन खुश हुआ, चलो कोई तो अपना मानता है, कोई तो अपनी मानता है, एक टांग पे खड़े हो जा, अब वो भी सोच रही क्या चल रहा है, वाली साहब की तबीयत तो ठीक है, एक टांग पे खड़ा हो जा, काम का सजा उसको, कोई छोटी सी गलती होगी उसको एकदम बड़ी सजा, उसके साथ में हुक्म चला रहा है, बाहर जाना चाह रहा है या कुछ किचन में नहीं जाना है, उसको जाना है टॉयलेट है नहीं जाना है, बैठ इधर, बैठ इधर ही, उधर ही कर देगा वो, उधर ही कर देगा, हुक्म चलाना। बाज़ औक़ात वालिदैन में थोड़ा सा शौक पैदा हो जाता है कि चलो कोई तो अपनी मानता है, किसी को तो डरा के अपनी बात चला सकते हैं, तो बच्चों के ऊपर इसको ट्राई करते हैं, बच्चों को ये चीज बहुत ही नुकसान देती है। अगर आप बच्चों की इसलाह के लिए उनको डांटते हैं सही बात है, कोई गलत बात नहीं है, बच्चों से गलती हुई है आप उनको डांट रहे हैं कोई बात गलत नहीं है, बच्चे गलत काम के लिए जा रहे हैं कुछ गलत करना चाह रहे हैं, मसलन टेरिस पे जाके वहां यहां वहां जा रहे हैं, आपने डांट के उसको उतार दिया, नीचे उतरो यहां से, झांकना नहीं यहां से ऊपर से गिर जाओगे नीचे, वजह बता के आपने उसको डांटा, वजह बताने से बात याद रहती है, समझ में आता है, वरना बच्चों को समझ में नहीं आता क्यों डांटा, आप वजह बता रहे गिर जाओगे यहां से नीचे उतरो यहां से, तो ये भी समझ में आया कि ये बहुत डेंजर चीज है इसलिए डांटा, और दूसरा ये कि क्यों डांटा वजह क्या है वो मालूम पड़ा, अच्छा गिर जाएंगे ऐसा है क्या, तो बच्चों को वजह बता के सख्ती से डांटना और हुक्म देना सही है गलत नहीं है, इसलिए कि बाद औकात बच्चों को बहुत खुशामद और प्यार मोहब्बत करेंगे सर पे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों को खामखा आप ये उनको महसूस हो जाए कि बस इनका दिल चाह रहा है कि हुक्म दे इसलिए हुक्म दे रहे हैं, इनका दिल चाह रहा है कि मुझको प्रेशराइज करें इसलिए कर रहे हैं, तो बच्चा बोलता ठीक है आज मेरा टाइम है कल तुम्हारा आएगा, आज मेरा टाइम है कल तुम्हारा आएगा मैं भी करूंगा ऐसे ही, तो बच्चा जो है उस पर हुक्मरानी से परहेज करें, बल्कि बच्चे के साथ में जो आपका रिलेशन होना चाहिए वो मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए, बच्चे को आप एजुकेट करें, बच्चा क्या है, बच्चे को आप जो सिखाए वो सीखेगा, आप जब बताओगे तब सीखेगा, आप कोई बच्चा गलती कर रहा है मतलब छुरी से खेल रहा है, आपने डांटा उसको फेंको आप फेंक दिया उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ, अब आपने उसको बुलाया इधर आओ ये जो छुरी है उसे आपने कुछ काट के बता दिया देखो इससे कटता है, अब ये जो ककड़ी इससे कट गई, ये जो आलू कट गया, हाथ ऐसा कट गया चलेगा, उंगली कट गई चलेगा, फिर तुमको बच्चे कहेंगे देखो एक हाथ वाला एक उंगली वाला एक उंगली कम है इसकी, अच्छा लगेगा ऐसा नहीं लगेगा, तो इसलिए इससे नहीं खेलना चाहिए इसलिए कि हाथ इससे कटता है, आपने एजुकेट किया बच्चे को तो बच्चे ने वो बात सीखी, अब वो बच्चा क्या करेगा, दूसरा बच्चा जब उसको देखेगा ये बच्चा, तो ये बच्चा उसको सिखाएगा नहीं इससे नहीं खेलते इससे हाथ कट जाते हैं हमारे अब्बू बोलते हाथ कटेगा, तो वो एजुकेट करेगा, अगर आप उसको एजुकेट करते हो आप उसको सिखाते हो वो सिखाएगा, आप उसको नहीं सिखाओगे उसको नहीं समझा उसको सिर्फ इतना याद रहा कि हाँ ये नहीं करना हमारे अब्बू मना करते हैं हमारे अब्बू को पसंद नहीं है इसलिए ये नहीं करना, तो जिंदगी आप बच्चों को कब सिखाएंगे, आप जब सिखाएंगे तब वो सीखेंगे, तो बच्चों को मोहब्बत से सिखाया जाए, उनको ये महसूस हो, देखिए बालों का क्या होता है बच्चा कुछ गलती करता है उसको नुकसान होता है उसमें माँ बाप और पीटते हैं उनको, मसलन कुछ जो है यहां वहां भाग रहा था गिर गया अब उसको लगा है पांव में से खून आ रहा है, अब माँ बाप नहीं चाहते बच्चे को कुछ नुकसान हो, दिल में बहुत मोहब्बत है माँ बाप के, बहुत मोहब्बत है बच्चे का भला चाहते हैं, बच्चे की तकलीफ से माँ बाप को तकलीफ होती है, लेकिन वो गिरा पांव में चोट आई खून निकल रहा है मोहब्बत में माँ बाप ने दो एक तमाचे इधर से लग गए दो वहां से पीठ में पड़ गए, बोला मुझको लगा है खून निकल रहा है एक ये टेंशन दूसरा इन दोनों को क्या हुआ मेरी पिटाई कर रहे हैं, उस वक्त में उसको माँ बाप की तो मोहब्बत है उनको उनके दिल में क्या है इसको क्या मालूम है ये आलिमुल गैब है इसको क्या मालूम है कि इनकी पिटाई फिक्र की वजह से है इसके दिल में भी समझ में नहीं आता इसको कि क्या हो रहा है, इसको चाहिए माँ बाप को चाहिए कि वो पहले उसका इलाज करें उसके बाद उसको समझाएं देखो ऐसा ऐसा हुआ आइंदा होगा तो बहुत पिटाई होगी आप बोले उसको, लेकिन आप बताए देखो पांव कभी कट जाता, कभी कुछ नुकसान हो जाता, कभी कुछ गिर जाता, कभी कुछ और हो जाता, हड्डी टूट जाती, क्या होता? डांटा आपने लेकिन समझाया उसको, समझाया उसको कि ऐसा ऐसा होता है, और मोहब्बत भी की उसको, मेरा बच्चा लग जाता तो कैसा होता, तो उसको लग रहा है यहां डांटते भी हैं लेकिन मोहब्बत भी है, और इनका डांटना मोहब्बत की वजह से है। आप बताइए, आपको एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आती, इतना छोटा बच्चा कोई कोर्स करके नहीं आया, उसको कैसा समझेगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है, और आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपके जो अल्फाज हैं, उनके पीछे आपके दिल के जज्बात क्या है, उसको क्या मालूम है? तो अभी अभी बेचारा दुनिया में आया नया मुसाफिर, उसको क्या मालूम है? उसको कुछ भी मालूम नहीं है। आप चाहते हैं कि उसको सच समझे और आप बताए भी नहीं कुछ उसको, नहीं हो सकता ऐसा। उसको आपको ये सोच के चलना है, इसको कुछ समझता नहीं है, इसको मेरे जज्बात, मेरी फिक्र, ये सब इसको समझना चाहिए, तब जाके ये बात सही हो सकती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो माँ बाप को कंसिडर, आप सोच रहे हो क्या मुश्किल है बच्चों की तरबियत, हाँ ऐसा ही है, बच्चों की तरबियत है। आप बताइए, बच्चों को इतना संभाल के अगर तरबियत करेंगे, ये बच्चा दुनिया में बहुत काम कर सकता है, ये बच्चा आपके लिए कयामत तक के अजर का सबब बन सकता है, अगर आप उसको इस तरह से संभालते हैं। हाँ, इतना भी कपास की तरह आप संभालेंगे उसको कि दुनिया में कदम रखने से भी वो डरे, इतना ज्यादा एहतियात या इतना ज्यादा मोहब्बत के प्यार मोहब्बत में जो है सड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको एकदम सोच समझ के, आपके लिए जिंदगी भर का प्रोजेक्ट है ये, उसके बालिग होने तक के लिए आपके लिए क्या है, ये एक जिम्मेदारी का काम है जो आपको संभालना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुमिनु मुलफ, मोमिन मुलफ होता है। मुलफ किसको कहते हैं? मुलफ उसको कहते हैं जिससे लोगों के दिल में नरमी पैदा हो, उससे मोहब्बत पैदा हो। मुलफ यानी मोहब्बत करने वाला, जिससे लोग मोहब्बत करें, जिसकी तरफ लोग मानूस हों, और जो दूसरों की तरफ मानूस हों। उनसियत जिसको कहते हैं, उनसियत मोहब्बत, शफकत, नरमी, करीब करना। المؤمن مؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف, اور اس میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک نہ کرے نہ دوسرے اس سے محبت کرے۔ ان مومن کیسا ہوتا ہے, اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہوتی ہے اور اس کا سلوک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سلوک سے دوسروں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے, پیج نمبر 26 آپ کو دیکھنا ہے, آپ کے پیجز شاید آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, کچھ لوگوں کی بائنڈنگ میں غلطی ہوئی ہے, اس کو دیکھ لیں, پیج نمبر 26 تلاش کریں, ریزنگ چلڈرن ان اسلام, اس کو نیچے سے فٹ نوٹ دیکھ لیں آپ, اور پیج نمبر 26 پر میں چل رہا ہوں, ہو سکتا ہے اسلام اور ہمارا گھر جو ہے بیچ میں آ گیا اس کے, تو 26 نمبر پیج ہے وہاں پہ آپ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے, مومن کا مزاج کیسا ہوتا ہے, ایک دم ہاتھ میں لکڑی اور ڈنڈا اور کچھ جو ہے ہنٹر لے کے کھڑا ہے, یہ تصویر مومن کی ہوتی ہے؟ نہیں, مومن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سلوک سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں اس کے کردار, اس کی شفقت, اس کی محبت, اس کی دلجوئی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف, اس آدمی میں کو کیا بھلائی ہے, اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ نہ وہ دوسروں سے محبت کرے نہ دوسرے اس سے محبت کرے, اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے, لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں اس کی شرمگیزی کی وجہ سے۔ آدمی کو ایسا نہیں بننا ہے جیسے سانپ اور بچھو ہوتا ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگیں, کہ قریب جائیں گے ڈنک مارے گئے, بہت ڈینجر ہے اس کے قریب مت جاؤ, تو ایسا آدمی کو نہیں بننا ہے, بلکہ آدمی کو ایسا بننا ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ان کے دل خوش ہو جائے, ہاں چلو یہ آ گیا۔ ایسے آپ ہیں کیا؟ آپ سوچیں اپنے بارے میں کہ گھر پہ آتے بچے خوش ہو گئے, او ابو آ گئے, امی آ گئی, بچوں کے دلوں میں خوشی پیدا ہو, کسی رشتے دار کے یہاں چلے گئے ان کا دل خوش ہو جائے, ارے یہ تو آ گئے, بہت اچھا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے میں بہت اچھا لگتا ہے, بہت محبت کرتے, بچوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے, بچے آپ کے آس پاس جمع ہو جائے, ایسے ہیں کیا ہم؟ بڑے چھوٹے ان کے اندر محبت, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, ارے یہ تو آگے بہت اچھا ہو گیا, آپ دکھائی دیے کہ لوگ چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, ایسے ہیں کیا آپ؟ ایسا ہے انسان؟ اپنے بارے میں سوچے کہ اس کا امیج کیا ہے, آئینے میں جائے کتنا ہی خوبصورت انسان ہو, لوگوں کے دلوں میں اس کی تصویر کیا ہے, حقیقت میں اس کی تصویر کیا ہے, یہ بھی آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ इसको देखते लोग बोलते जल तू जलाल तू आयु बला को डाल तू, ऐसा बोलते हैं कि लोग, इसको देखते लोगों के दिलों में ये पैदा होता है कि अरे मुसीबत कहां से आ गई है, शैतान का नाम लो और ये आ गए देखो। तो ऐसा है क्या? इंसान को सोचना चाहिए कि उसका मामला कैसा है। इंसान ऐसा बने, इंसान ऐसा बने कि देखिए दूसरों को खुश नहीं करना है, मकसूद ये नहीं कि दूसरों को खुश करे चलो नाम हो जाए पूरे गांव में मशहूर हो गए बहुत अखलाक वाले, ये तो रियाकारी है, दिखावा है, ऐसा नहीं, दिखावे के लिए नहीं, फेमस होने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के नजदीक अजर के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए। अब बताइए लोगों से हम करीब होंगे, लोगों से करीब होंगे तो आप मोहब्बत में किसी को कुछ बोल दे ऐसा मत किया करो, ये गलत बात है, तो आपसे मोहब्बत रखने की वजह से वो शख्स बच जाएगा कि चलो ठीक है इनको ये पसंद नहीं है, उससे आदमी रुक जाएगा। बहुत सारी चीजें दलीलों से लोग नहीं मानते हैं, मोहब्बत में मान लेते हैं, मुरव्वत में मान लेते हैं, अदब में मान लेते हैं, दलील देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप अपने आप को ऐसा बनाए कि कोई इंसान अगर उससे आप कुछ कहें कि ऐसा मत करो ये गलत है, तो आपकी इज्जत की वजह से आपसे मोहब्बत की वजह से वो इंसान वो तर्क कर दे कि चलो फुलाने बोले कि ये अच्छा ही चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, इसने मना किया है तो कुछ तो होगा, चाहे दलील न दी हो। ऐसा इंसान अपने आप को बनाए, इतना मजबूत रिश्ता लोगों से उसका होना चाहिए, और औलाद, औलाद से तो और भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि औलाद की जिम्मेदारी हम पर है। तो ऐसा रिश्ता बच्चों से हो कि अगर आप बच्चे से कहें ठीक है नहीं मानता है ना, ठीक है तेरे से बात बंद करता हूं, बात बंद करो, आपका बच्चा सोचे बात बंद, इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा कि अब्बू अम्मी बात बंद करने वाले हैं, नहीं 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 ठीक है मैं जाता हूं स्कूल जाता हूं, ठीक है मैं ये करता हूं दवाई खाता हूं, तो बात बंद करना तो बहुत डेंजर मामला है। तो बच्चे को वालिदैन की मोहब्बत से महरूमी, बच्चों को, बच्चे को वालिदैन के ताल्लुक से दूरी, ये सबसे बड़ी सजा महसूस होने लगी। इतना ज्यादा अच्छा आपका रिश्ता अपने बच्चे से हो, इतनी ज्यादा मोहब्बत आपको अपने बच्चे से हो, आपका बच्चा आपको इतना चाहता हो, ऐसा रिश्ता आपको रखना है। ऐसा नहीं कि ठीक है डंडा निकालो, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि आपको डंडा, आपको उसका कुछ नहीं, डंडा उसको याद आता है जब भी आपको देखे, तो आपके हाथ में चाहे मोबाइल हो, आपके हाथ में चाहे कोई और किताब हो, उसको डंडा दिखाई देता हो, डेंजर डंडे वाले बाबा ये, तो ऐसा उसको लगता हो कि आपको देखते ही डरे, आपको देखते ही डरे, घर में बैठा है चुपचाप बैठा है, आपको देखते ही उल्टी किताब पकड़ लिया, इसको इनके सामने ऐसी बनना चाहिए, शरीफ बन के रहना चाहिए। जो बच्चे, आप याद रखिए, जो बच्चे माँ बाप से सिर्फ डर के शरीफ बनते हैं, माँ बाप के पीछे बड़े शरीफ बनते हैं, क्योंकि उनको उसमें मजा आता है कि कोई नहीं देख रहा है तो शरारत करने में बहुत मजा आता है। तो जो डर की वजह से सुधरते हैं, सिर्फ डर की वजह से, तो ऐसे बच्चे जो डर खत्म हो गया एकदम डेंजर बन जाते हैं, ये भी याद रखिए। तो शफकत मोहब्बत के साथ में उनसे सलूक रखिए। जो हदीस मैंने बयान की कि मोमिन मोहब्बत करने वाला होता है, इसको इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया है, सही अल जामे सगीर में शेख अल अल्बानी ने इस हदीस को सही कहा है। नंबर 7, बच्चों की तरबियत में ये बात भी याद रखें कि सिर्फ सिखाने वाले आप ना बने, बल्कि आपका अपना प्रैक्टिकल मॉडल भी बच्चों पे बहुत असर डालता है। क्या आप यहां वहां की किताबें ला के बच्चे को दे दे, पाओ ये दीन की किताबें ऐसा बनो, अच्छा लेकिन आप नहीं बने तो बच्चे के अब्बू नहीं बने तो हम क्यों बने अब तक, अब्बू इतने बड़े हो कि नहीं बने हम क्यों बने, अम्मी इतनी बड़ी हो कि अब तक नहीं बनी मैं क्यों बनूं, तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें, इसलिए ये मेरे को बनने बोल रहे हैं खुद नहीं बन रहे हैं। अगर खुद अमल नहीं करेंगे और बच्चों को, बाद वालिदैन का मामला होता है कि खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे और बच्चे ने घर में आते ही पहले नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा, दे दनादन धुलाई उसकी, और वालिद आए हैं और बैठे घर में ऑफिस का काम कर रहे हैं, कभी दोस्त और आ गए हैं उनके साथ गपशप में लगे हैं, नमाज, नमाज को सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। कभी कहीं बाहर चले गए पिकनिक पे चले गए, काहे की नमाज, ऐसे जैसे नमाज उनको मालूम ही, नमाज भी इस्लाम में है, पिकनिक पे चले गए तो काहे की नमाज, कुछ भी नहीं। कभी मैच चल रहा है, अच्छा मैच चल रहा है तो मैच यानी सबसे अजीम शान फरीजा है बगैर अजान के, बिल्कुल मैच पूरा शुरू से एंड तक, जोहर गई, असर गई, मगरिब गई, सब गई, मैच है। वाली साहब को मैच बहुत पसंद है। तो इस तरह से अगर गलत बच्चों के सामने तस्वीर होगी तो ये बच्चे कैसे सुधरेंगे? वालिदैन का अमल बच्चों की पहली यूनिवर्सिटी होती है, पहली किताब होती है, सबसे गोल्डन बुक बच्चों की क्या होती है? वालिदैन का ऑब्जर्वेशन, बच्चे जो हैं वालिदैन को पढ़ते हैं और वालिदैन को देख के सीखते हैं। आप देखिए, आप वालिदा अगर नमाज पढ़ने वाली हो, बच्चा दाएं हाथ से खेल के आएगा, माँ के साथ में बाजू में खड़ा हो जाएगा, अब माँ रुकू में गई सीधा सज्दे में जाएगा, माँ को देख के काम करता है। वालिद साहब अगर बैठे हैं किताब उठा के पढ़ रहे हैं, बच्चा आएगा दूसरी कोई किताब लेगा, वालिद साहब को देखेगा किताब पढ़ेगा, खुद भी उल्टी पकड़ेगा लेकिन पढ़ेगा, वालिद साहब को देख रहा है। वालिद साहब बैठे बैठे चश्मा निकाल के रख दिया, वालिद साहब को चश्मा उठा के खुद पहनेगा, क्योंकि उसको वालिद के जैसा बनना है, उसका आइडियल बचपन में। आप याद रखिए इस बात को, बचपन में बच्चे के सबसे फेवरेट उस्ताद लोग कौन होते हैं? उसके माँ बाप सबसे फेवरेट उसके आइडियल होते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी कमजोरियां उसके सामने आने लगती, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उनके वीक पॉइंट देखता जाता है और उसकी लिस्ट में उनका नाम नीचे 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 जाता है, उनका नाम नीचे जाता है, उनकी कमजोरियां उसके सामने आने लगती हैं। और अरे 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 मैं इनको बहुत अच्छा समझाता, ये तो थोड़े डेंजर निकले, तो वो अपनी लिस्ट में उनका नाम नीचे ले जाता है, कभी कभी बाहर भी निकाल के इज्जत से रख देता है कि ये अपनी लिस्ट वाले नहीं है, ये नेगेटिव लोग हैं। तो ऐसा होता है शुरुआत में, बच्चा बाहर देखे कोई उसको डराए, कोई तो अब्बू को बोलूंगा, उसको कोई तकलीफ, उसके लिए अब्बू सिक्योरिटी होता है, गिरता है अम्मी चिल्लाता है, माँ उसको मालूम होता है माँ उसको बचाने वाली है, अब्बू चिल्लाता है, उसके लिए सब कुछ अगर कोई है माँ बाप है, उसके नजदीक बच्चों में खेल रहा है, हमारे अब्बू तो ऐसा करते हैं, हमारी अम्मी तो ऐसा करती हैं, उसके नजदीक आइडियल माँ बाप है। माँ बाप का अमल अगर उसको गलत दिखाई दे, माँ बाप अगर कहें जा बेटा बाहर जा, जो चाचा खड़े हैं ना उनको बोलना अब्बा घर पे नहीं है, अच्छा अब इसमें बोल रहा अच्छा अब्बा घर पे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं अब्बा घर पे है, और बाहर जाके मैं बोलूं अब्बा घर पे नहीं, अच्छा मेरे झूठ की तारीफ, अब्बू मुझको बोलते हैं सच बोलना, सच बता कहां गया था, अच्छा मुझसे तो पूछ रहे सच बता, हमेशा सच बोलना मुझसे झूठ नहीं बोलना, और आप मुझको झूठ दूसरों से बोलने के लिए कह रहे हैं, आप झूठ बोलने के लिए मुझसे कह रहे हैं। तो अब वालिदैन का जब गलत अमल देखता है तो उसका भरोसा वालिदैन से टूट जाता है। अब वालिदैन जो उसूल देते हैं बोलता है ये उसूल मालूम नहीं असली है कि नकली है, ये उसूल मालूम नहीं सही कि गलत है, वो कंफ्यूज हो जाता है, सही क्या है गलत क्या है, उसकी तराजू बिगड़ जाती है, उसको समझ में नहीं आता सही क्या है, उसको लगता है अगर ये सही होता तो वालिद साहब खुद अमल करते, वालिदा अमल करती, लेकिन अगर ये सही है तो ये अमल क्यों नहीं करते हैं, ये गलत है या उसूल गलत है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। फिर वो अपने उसूल खुद जज करने लगता है, नहीं मैं इसको सही समझता हूं मैं इसको सही समझता हूं, तो अपनी एक लिस्ट बनाता है, बाद वक्त बच्चा बिगड़ जाता है। तो घर के अंदर वालदैन का कौल अमल इसमें तजाद नहीं होना चाहिए, घर के माहौल में प्रैक्टिकली जो बोलते हैं उसके मुताबिक अमल होना चाहिए, जिन उसूलों को घर के अंदर सही माना जाता है उन उसूलों को अपनाना चाहिए, जिन चीजों को घर में गलत माना जाता है जबान में जबान से जिनको गलत कहा जाता है घर में उन पर अमल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा घर का माहौल है तो बच्चा सही बन सकता है। तो वालिदैन को चाहिए कि कौल अमल में तजाद न करें, बोलने में और करने में, कथनी और करनी में तजाद नहीं होना चाहिए, बोलने में और अमल में तजाद नहीं होना चाहिए, कौल अमल में मुताबिकत होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में सूरतुल बकरा आयत नंबर 44, अतअमुरूना नास बिल बिर्रि व तंसून अनफुसकुम व अंतुम तत्लून अल किताब अफला तअक्लून, अतअमुरूना नास बिल बिर्र, तुम लोगों को भलाई की ताकीद करते हो, व तंसून अनफुसकुम, और अपने आप ही को भूल जाते हो, लोगों को कहते हो अच्छे काम करो और खुद नहीं करते, अपने आप को भूल जाते हो, वो अंतुम तत्लून अल किताब, और तुम किताब पढ़ते हो, अल्लाह की किताब तुम पढ़ते हो, अफला ताकिलून, तुमको अकल नहीं है, तुमको अकल नहीं है क्या? जो आदमी कौल अमल में तजाद रखता हो इल्म के बावजूद, ये आदमी इसके पास अकल नहीं है, इसकी अकल में फॉल्ट है। अल्लाह ताला ने ऐसे आदमी को अकल में खराब बतलाया जो कौल अमल में तजाद रखता हो, लोगों को भलाई की तलकीन करता हो और खुद अमल ना करता हो, ऐसा आदमी इसकी अकल में कमी है, इसकी अकल में कमी है। तो बच्चों के साथ में ये उसूल याद रखें कि आप बच्चे के लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हो, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो बच्चे के लिए, अगर आपका अमल गलत दिखाई देगा तो आपका मर्तबा उसकी निगाह में घट जाएगा। आपका मर्तबा जब घट जाएगा, आपकी बात का मर्तबा भी घट जाएगा। इसलिए बच्चों के सामने, कम से कम बच्चों के सामने कौल अमल में तजाद नहीं होना चाहिए, और इंसान को चाहिए कि हकीकी तौर पर अपने कौल अमल में तजाद को खत्म कर दे, सही चीजों की तलकीन करें, खुद भी अमल करें, बुराइयों से मना करें, खुद भी बचे। इसी तरह से आठवीं चीज जो बच्चों की इसलाह के और उसकी उनकी तरबियत से मुतालिक है, वो ये कि बच्चों की इसलाह में ताखीर न करें। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं तो वालिदैन अगर कोई एक डांटे तो दूसरे मोहब्बत करने वाले कहते हैं छोड़ो अभी बच्चा है, अभी बच्चा है। या बच्चे बुराइयां करते हैं, गलतियां करते हैं, माँ बाप नजरअंदाज करते हैं, चलो बच्चा ही तो है, गाली दे रहा तो क्या, बाद माँ बाप को भी उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, बोलना सीख रहा है अभी, अच्छा बोलना सीख रहा है अभी, तो चाहे गलत बोले माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। बाद अवकात बच्चा बाहर से कुछ चीजें सीख क्या था, मसलन बाहर देखा दूसरे नाच रहे हैं, घर में आके खुद भी नाच के बता रहा माँ बाप को, अब माँ बाप देख के हंस रहे हैं उसको, अरे ये कहां से सीख क्या है, कितना अच्छा लग रहा देखो, इतना छोटा बच्चा हो के नाच के बता रहा, और मेहमान आ गए घर पे देखो कैसा नाचता है बच्चा हमारा, तो गा के भी नाचता है, गाता भी है, नाच के भी बताता है, म्यूजिक भी बजाता है खुद से ही, मेहमान भी खुश। बच्चे बोला तारे हुआ ये तो कुछ अपना नाम हो रहा है, और मेहमान ने इस पे चॉकलेट दिया तो खत्म, मेहमान ने कुछ दे दिया इस पे तो बहुत अच्छा है। बच्चा जो है ये अगर उसकी इसलाह में गलतियों पर उसको टोका नहीं जाए तो वो ये समझता है कि जो कुछ मैंने किया है वो सही है। अगर वो गलती पर उसको टोका न जाए वो ये समझता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। वालिदैन को चाहिए कि घास को पेड़ बनने न दें, जड़ें अगर जमीन में गहराई तक चली जाएं, छोटा पौधा है अगर वो पौधा जहरीला है, खराब है, नहीं बढ़ना चाहिए, आप अगर उसको शुरुआत ही में खींच लें, हाथ से पकड़ के उसको उखाड़ सकते हैं, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो बढ़ता गया वो एक घना पेड़ बन गया, अब उसको आपको पसीना गला के आपको उससे कुल्हाड़ी से कई दिन में तोड़ना पड़ेगा, और जड़ें उखाड़ना आपके बस की बात नहीं है। तो पेड़ जो है यानी जब गहराई तक चला जाता है उसको काटना बहुत मुश्किल मुसीबत हो जाती है। इसी तरह से इंसान के किरदार में कमियां, कमजोरियां, कोताहियां, खराबियां, उयूब जब जड़ पकड़ लेते हैं तो फिर उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, आदमी चाह के भी उसको निकाल नहीं पाता है। तो बहुत सारे बच्चे उनके बिगड़ने के जिम्मेदार उनके माँ बाप होते हैं, बहुत सारे बच्चों के बिगड़ने के वालिदैन जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कि बच्चों में खराबियां देखते हैं लेकिन उसको हंसी में टाल देते हैं, या ये समझते हैं कि अभी बच्चा ही है, और बच्चा उस चीज को सीख लेता है और उस चीज को याद रखता है। अगर उसको फौरन बताया जाए यह गलत है, आइंदा ये चीज नहीं होना चाहिए, पहली मरतबा पिटाई ना हो, पहली मरतबा समझाया जाए, दूसरी मरतबा समझाया जाए, कई मरतबा समझाने के बाद अगर नहीं मानता है बच्चा, पिटाई भी हो उसकी, ताकि उसको याद रहे कि ये गलत बात है, इस पे पिटाई भी होती है, तो उसको बचने की आदत पड़े चाहे पिटाई ही से क्यों ना हो। तो इस्लाह में ताखीर नहीं करना चाहिए, ये भी बच्चों के सिलसिले में बात याद रखें। बच्चों में बेहूदगी पैदा हो जाती है, बदअखलाकी पैदा होती है, और बहुत सारे उयूब पैदा होते हैं। आप बच्चे में अगर कुछ खराबी देखते हैं तो प्यार मोहब्बत से और संजीदगी के साथ में कहें बेटा देखो ये चीज गलत है, ये चीज आइंदा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कुछ नुकसान है तो आप नुकसान भी उसको बता दें, देखो ये चीज गलत है, इससे ये नुकसान होता है, ताकि बच्चा उसको याद रखे, एक जेन्युइन कॉज और रीजन उसके पास हो कि क्यों ये गलत है। क्योंकि कोई भी बात आप बच्चे को बताते हैं ऐसा नहीं करना, बच्चा आपसे पूछता क्यों, अब आपका जवाब अगर ये है मैं बोल रहा हूं इसलिए, बस क्यों पूछता है धुलाई, तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा। बच्चे को आप बताएं इसलिए कि यह ऐसा नुकसान है, अगर बताने जैसी चीज है बताएं, उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है फिर आप चाहें तो उसकी खबर ले सकते हैं हिसाब के अंदर। लेकिन बच्चे को समझाना, मना करना और फौरन टोकना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद नहीं किया कि आदमी अपने घर वालों में बुराइयों को देखता रहे और कुछ भी ना करे, और बुराइयां बेहयाई की हद तक पहुंच जाए और आदमी जाने दो चलता है कह के चलता रहे। बाद औकात बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटी है और कॉलेज जा रही है और बाइक पे जा रही है और टी शर्ट और पैंट टाइट पहन के जा रही है, बाप को कोई अगर आदमी कहे कि भाई क्या है क्या चल रहा है, कभी माँ कहे कभी रिश्तेदार कहें कि क्या है आपकी बच्ची बगैर पर्दे के एकदम टी शर्ट पहन के जा रही है, पैंट पे जा रही है और जो है पीछे लड़का बैठा है उसके, क्या है? कहे भाई देखो ये आजादी का डेमोक्रेसी है, ये आजादी का दौर है, वो खुद अपना भला बुरा खुद समझते हैं, वो जो चाहे करें, आजादी मैं उनको टोकता नहीं हूं, हर एक इंसान समझदार है अपना अपना करे। अगर वालिदैन बच्चों को नहीं टोकेंगे और आजादी देंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, इजायज नहीं है, इजायज नहीं है। अगर जहर पी लेगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? अगर बेटा है बाहर बैठ के बच्चों के दूसरों के साथ में जुआ खेल रहा है, बड़ा हो गया है, सिगरेट पी रहा है, आपको मालूम हुआ, चाहे आपके सामने ना पीता हो, आपको फुलाने बताया आपका बेटा सिगरेट पीता है, आप बोले भाई देखो मैं तो बोलता नहीं, अब बड़ा हो गया, बच्चे अपना अपना खुद संभाल लेंगे, बड़े हो गए बच्चे, अब हमारा काम था, जब तक छोटे थे हमने संभाला, अब बड़े हो गए हमारी जिम्मेदारी खत्म। आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, आपकी जिम्मेदारी अब भी बाकी है, वो आपकी औलाद है, आपका काम है उसको बताना, देखो ये गलत है, ये गलत है, हाँ पीछा ही नहीं पकड़े उसका, आप बताएं उसको, जिस उम्र का वो है उस उम्र के एतबार से उसकी इस्लाह की कोशिश होना चाहिए, उस उम्र के एतबार से उसकी इस्लाह की कोशिश हो, तो इस्लाह में ताखिर ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलातुन कद हरम अल्लाह अलैहिमुल जन्ना, तीन लोग हैं अल्लाह ताला ने उन पर जन्नत को हराम कर दिया है, अल्लाह ताला ने उन पर जन्नत को हराम कर दिया है, यानी वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि उनको सजा ना हो। मुदमिनुल खम्र वल आक वद्दयूस अल्लज़ी युक़िरु फी अहलिही अल खबथ, ये तीन लोग कौन है? मुदमिनुल खम्र, शराब में डूबा रहने वाला, शराब में डूबा रहने वाला, जिसको शराब की आदत हो चुकी हो, शराबी, हमेशा शराब में मस्त रहने वाला, वलाक माँ बाप के साथ में बदसलूकी करने वाला, माँ बाप के साथ में रिश्ता तोड़ के उनके साथ बदअखलाकी और उनको तकलीफ देने वाला, उकूक से है, उकूक के माना होते तकलीफ देने और रिश्ता तोड़ने के। वद्दयूस अल्लज़ी युक़िरु फी अहलिही अल खबथ, और वो दयूस किस्म का आदमी जो अपने घर वालों में खबासत देखकर भी उस पर राजी हो जाए, अपने घर वालों में देख रहा बदअखलाकी है, बीवी के अंदर बदअखलाकी आ रही है, मेकअप करके बगैर पर्दे के जा रही है शादियों में लोगों की, अपनी जीनत का इजहार मर्दों के सामने कर रही है, बैठा है चुपचाप मौलवी साहब बन के कोने में, अब बैठा है कुछ बताता नहीं, कुछ मना नहीं करता है, कुछ इसलाह नहीं करता है, बच्चियों के अंदर देख रहा है, बच्चों के अंदर देख रहा है, घर के अंदर सब मिलके फिल्में देख रहे हैं, बेट बहन है भाई है सोफे पे बैठे हैं फिल्में देख रहे हैं, और ये आता है बाहर से चाबियां लटकाया अपनी छतरी लटकाया वहां पे, और यहां वहां देखा सबको, कोई उठा नहीं पानी देने के लिए, चुपचाप किचन में गया पानी पिया और अपने कमरे में जाके खोल दिया अखबार, सकार दोपहर सो जो भी है पढ़ता बैठा अखबार, ये अपनी खराबियों में है, ये इसका जबान हरकत नहीं करती है, इसकी जबान हरकत नहीं करती है, ये क्या है? दयूस है ये। आपने फरमाया दयूस अल्लज़ी युक़िरु फी अहलिही अल खबथ, दयूस जो अपने घर वालों में बुराई देखे, खबासत और गंदगी देखे और उस पर राजी हो जाए, मतलब उसको चलने दे, उसको कभी रोके नहीं, तो ये चीज बुरी है। इसको इमाम अहमद ने रिवायत किया और सही अल जामे सगीर में शेख अल अल्बानी ने इसको सही कहा है। इसी तरह से नौवीं चीज यह है कि बच्चों को अगर आप सजा देते हैं तो सजा में एतदाल होना जरूरी है, जुल्म नहीं होना चाहिए, सजा में जुल्म नहीं होना चाहिए। आपने एक मरतबा जिस चीज की सजा दे दी थी, आप वापस से आपका मूड हो गया तो फिर से उसी गलती पर पिटाई करें, जुल्म है। यानी पिछली चीज जिससे बच्चा तौबा कर चुका है और उसको छोड़ चुका है और दूसरी कोई गलती किया, अब आपने पिटाई उसकी शुरू की तो पिछली गलती की भी सजा दे रहे हैं, हाँ ऐसा करता है यूं करता है, तो अब वो तो तौबा कर चुका है, उसको छोड़ चुका है और फिर भी आप उसको पीट रहे हैं, तो सोचेगा जो चीज मैंने छोड़ी थी उस पर भी जब मार खाना पड़ता है, जब उस पर पिटाई होती है, छोड़ो भी तो भी मार पड़ती है, तो फिर छोड़ के फायदा क्या है? तो आपको याद रखना चाहिए कि आप उसी गलती के बच्चे को सजा दें जो बच्चा कर रहा है, जिस गलती को बच्चा छोड़ चुका है आपने उसको गिनवाना भी नहीं है और आपने उस पर बच्चे की पिटाई भी नहीं करना है। छोटे से छोटे बाज़ औक़ात इंसान आपस में बड़ों के रिश्तों में भी चीज होती है कि बीवी शौहर है, भाई बहन है, वालिदैन औलाद हैं, दोस्त दोस्त हैं, एक गलती पहले हुई थी वापस से वही उसको दोहराया जाता है, अगर चाहे आदमी उससे तौबा कर चुका हो, अगर चाहे उस बुराई को छोड़ चुका हो,
इंसान को चाहिए कि औलाद की इस्लाह में इस बात को याद रखे, जो गलती बच्चे से हो चुकी थी उसको वो छोड़ चुका है, अब उसके बाद में फिर वो गलती कोई और गलती करता है, अब आप बच्चे की पिटाई कर रहे हैं तो आप उस पिटाई में उसी चीज को डिस्कस करेंगे, पिछली चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, वरना बच्चे को लगेगा कि जब छोड़ के भी फायदा नहीं है तो फिर क्या फायदा है, उस पर पिटाई हो रही है जो मैं छोड़ चुका हूं। तो ये बात याद रखें। दूसरी बात, पिटाई कर रहे हैं, एकदम इतनी पिटाई कर दी कि हाथ पांव सूज गए, हड्डी टूट गई, चेहरे मुंह से खून निकल रहा है उसके, क्या गलती थी, आपने मना किया नाक में मेरे सामने बैठ के हाथ नहीं डालना है, सुना नहीं उसने। अरे भाई बच्चा है, छोटा बच्चा है, नाक में हाथ डालता है, आपको इतना गुस्सा आया कि आपने उसको इतना पीटा कि उसका खून निकला है। सजा के अंदर एतदाल होना चाहिए, सजा के अंदर एतदाल होना चाहिए। इतनी बड़ी सजा आप छोटी सी गलती पर अगर देंगे तो बच्चे के अंदर जुल्म का एहसास पैदा होगा और वो आपके खिलाफ बगावत करेगा, यकीनन करेगा, आप भरम में रहेंगे, किसी ना किसी दिन बराबर आपको बोलेगा आपने उस दिन मेरी ऐसी पिटाई की थी, याद है आपको बोलेगा, उसको याद है, आप भूल गए, उसको याद है। तो बच्चे के लिए ये बात भी याद रखें कि बच्चे की गलती पर उसको आप सजा दें, लेकिन सजा में एतदाल हो, ऐसी सख्त सजा आप न दें कि जिससे बच्चे के जिस्म को नुकसान हो या उसकी रूह को नुकसान हो। मसलन बच्चे ने गलती की, आपकी बात नहीं मानी, या बच्चे ने घर का शीशा, घर में आपने मना किया था घर में खेलना नहीं, अब बच्चा बॉल घर में ही खेल रहा है, उसने क्या किया, आपने बहुत शौक से जो फ्लावर पॉट लाया था उसने वो फोड़ दिया, अब आपका सर सातवें आसमान पे पहुंच गया, अब आपने क्या किया, ठीक है सजा क्या दिया आपने, बच्चे के कपड़े उतरवा के बाहर उसको दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। बहुत सारे माँ बाप करते हैं ऐसा, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेंगे, इंसल्ट करना है उसका। आपने क्या किया, आपने आंगन में बरामदे में उसको खड़ा किया, कैसे खड़ा किया, पूरे कपड़े उतरवा दिए और कपड़े उतरवा के बाहर खड़ा हो गया, आप देख कैसा मजा आता, अब पड़ोस के बच्चे आ रहे, अरे ये तो नंगा, उसको देख के हंस रहे, कोई उसको पत्थर मार रहा है और ये चुपचाप खड़ा है, आपने उसका इंसल्ट किया, आपने उसको उसके दोस्त, आप बताइए आपके दोस्तों में, आपकी सहेलियों में, आपके रिश्तेदार में आपकी इज्जत है, बच्चों का भी अपना सर्कल होता है, उसकी इज्जत भी इज्जत है, उसको एहसास होता है इज्जत का, उसको भी इंसल्ट का एहसास होता है, आपके लिए वो बच्चा है लेकिन उसके लिए उसके बच्चे उसके बराबरी वाले हैं, उसके साथ वाले दोस्त जो हैं उनमें उसकी अपनी इज्जत है, अब स्कूल में जा रहा है बच्चे उसका इंसल्ट करें, कैसा नंगा था कल, कैसा माँ बाप ने तेरे उसको तेरे को बाहर खड़ा किए थे, पूरी स्कूल में बच्चों ने मशहूर कर दिया है, जो आ रहा है उसको सता रहा है, अब बताइए उसको गुस्सा किस पे आएगा, उसको गुस्सा आप पे आएगा। ऐसी सजा बच्चों को ना दें जिसमें बच्चों की बेइज्जती हो और वो सजा उनको दिखाई दे कि मेरी गलती छोटी थी लेकिन ये सजा बहुत ज्यादा होगी, चाहे वो मारपीट के एतबार से हो, चाहे वो इंसल्ट के एतबार से, चाहे इंसल्ट के एतबार से, तो ऐसी सजा बच्चों को नहीं देना चाहिए जो उनको खुद महसूस हो और आप खुद जानते हो कि गलती के मुकाबले में बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है। बार बार बच्चों से भूल से कुछ हो जाता है, उस पर माँ बाप उनकी बहुत पिटाई कर देते हैं, मसलन बच्चा है उसने देखा नहीं आप पीछे से आ रहे हैं चाय लेके, आपने आवाज नहीं की और सामने बच्चा है, बच्चा पलटा मुड़ा और उसने आपको धक्का दे दिया, आपकी चाय पूरी आपके पांव पे गिर गई, थोड़ी बच्चे की भी पांव पे गिर गई, गरम गरम चाय गिर गई, अब आपने क्या किया, दे दना दन धुलाई शुरू कर दी बच्चे की दोनों हाथों से, क्यों देख के नहीं चलता है, आपको बोलने नहीं आया, गाड़ी वाले हॉर्न बजाते हैं आपको बोलने क्या हुआ, बेटा चाय लेकर आने गिर जाएगी चाय, आपको क्या हुआ बोलने के लिए, आपने आवाज करना, आपकी गलती है, बच्चा है वो कैसे देखेगा, छोटा बच्चा है वो, लेकिन आपने अपनी गलती की सजा किसको दी, बच्चे को दी। तो बाद औकात बच्चों की गलती भी नहीं होती है लेकिन कुछ नुकसान हो जाता है, उस नुकसान पर हम बच्चों को सजा देते हैं, बच्चे सब चीजें याद रखते हैं, रिकॉर्डर होते हैं उनको रिकॉर्ड होता है सब कुछ, उनको याद रहता है, आप उनकी पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, आप उनकी शख्सियत को दरहम बरहम खराब कर रहे हो, आप उसको मजरूह कर रहे हो। तो बच्चों को सजा देने में एतदाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबना उस्सबई सिनीन वाग़रिबूहुम अलैहा वहुम अबना उअश्र, बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं और 10 साल के होने पर भी جب وہ نماز نہ پڑھیں تو اس پر ان کو مارو، ان کو سزا دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو غلطیوں پر سزا دی جانی چاہیے اگر ضروری ہو تو۔ اگر بچے کچھ غلطیاں کریں، آپ کو دکھائی دے کہ بولنے کے باوجود اصلاح اس کی نہیں ہو رہی ہے، تو اصلاح اگر نہیں ہو رہی ہے بچے کی تو آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن سزا کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ سزا میں اعتدال۔ بعض اوقات والدین بچوں کو سزا ہی نہیں دیتے ہیں، ویسٹرن کنٹری کے طور پر، ویسٹرن کلچر میں کیا ہوتا ہے، بچے کو سزا نہیں دینا ہے۔ بعض اوقات بچے اس طرح سے جب دیکھتے ہیں کہ والدین سزا نہیں دیتے ہیں تو بچوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، آزاد مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کو سزا دینا بھی ضروری ہے لیکن موقع پر ہونا چاہیے، موقع پر ہونا چاہیے۔ بارش اگر بے موسم ہو تو فصل خراب ہو جائے گی، تو ویسی پٹائی کی جو بارش بچے پہ ہوتی ہے وہ بھی بے موسم ہو اور بہت زیادہ ہو، فصل خراب ہو جائے گی، بچے کی فصل، اس کی تربیت خراب ہو جائے گی، پودا سڑ جائے گا۔ تو اس کے لیے، اور بارش نہ بھی ہو تو پودا سوکھ جائے گا، تو موقع پر اس کو، بچے کو سزا ہونا چاہیے۔ لیکن سزا کیسی ہو؟ صحیح وقت پر، صحیح انداز میں، صحیح مقدار میں۔ صحیح وقت پر ہو، ٹائم پہ ہو۔ آپ کو ٹائم نہیں، آپ نے سزا نہیں دی، اور آپ کا کچھ کام نہیں کیا بچے نے، تو آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، اور غلطی اس نے کیا تھا ایک مہینے پہلے، اس کی سزا آج آپ اس کو دے رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح وقت پر، صحیح مقدار میں، اور صحیح طریقے سے سزا ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے سزا ہونا چاہیے۔ الٹا باندھ کے اس کو آپ مار رہے ہیں، اوپر لٹکا کے الٹا، یہ کوئی مارنے کا طریقہ ہے؟ آپ جانور کو مار رہے ہیں، کس کو مار رہے ہیں؟ الٹا لٹکا دیا اس کو اور اس کو مار رہے ہیں، خوب مار رہے ہیں، خوب مار رہے ہیں، موم بتی کے چٹکے اس کو دے رہے ہیں آپ، موم بتی کے چٹکے اس کو دے رہے ہیں، آپ اس کا بوری میں منہ ڈال رہے ہیں اور بند کر کے اس کو گاٹ باندھ رہے ہیں اس کے گردن پہ، یا آپ اس کو الٹا لٹکا رہے ہیں اور اس کو دھنی دے رہے ہیں، دھواں دے رہے ہیں اس کو آپ۔ بعض والدین ایسا کرتے ہیں، اب بتائیے سانس اس کے پھیپڑوں میں، وہ دھواں گیا کیا ہوگا اس کو؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اولاد کو جو سزا دیں اس میں اعتدال کریں، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں تم پر آئے گا۔ ظلم چاہے جانور پہ ہو، انسان پہ ہو، بڑے پہ ہو، چھوٹے پہ ہو، ظلم ہی ہے۔ ظلم کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، تو بچوں پہ ہم ظلم نہ کریں، بچوں کو سزا دینے میں اعتدال کریں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بچے کی اصلاح کی بجائے اپنا غصہ ہم سزا میں اتارتے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ آپ جب بھی بچے کو سزا دے، سوچئے تھوڑی دیر، ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ یہ جو پٹائی میں بچے کی کر رہا ہوں، یہ بچے کی اصلاح کے لیے ہے یا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے؟ اگر آپ اپنا غصہ بچے پر نکال رہے ہیں تو آپ بچے کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، بچے کو بگاڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ بچے کو پیٹ رہے ہو اور بچے کی اصلاح کے لیے اور بچے کو سدھارنے کے لیے غلطی پر، تو پھر یہ اعتدال میں رہے گا، لیکن اپنا غصہ نکالنے کے لیے تو اس میں ظلم یقینی طور پر ہوگا، اس میں ظلم یقینی طور پر ہوگا۔ یہ الگ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ جب بھی بچے کو سزا دیں، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے ذہن میں سوچیں کہ یہ میرا غصہ اتارنے کے لیے ہے یا بچے کی اصلاح کے لیے ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو یہ بریک لگے گا، یہ ایئر بریک ہے، یہ انسان کے لیے بریک بنتا ہے بچے کو بگاڑنے سے بچنے کے لیے۔ تو جو حدیث میں نے ذکر کی، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے دسویں بات جو کہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ بچوں کی تربیت میں اور ان کے پالنے پوسنے میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بیٹی کو نمبر ٹو درجہ نہیں ملنا چاہیے۔ گھر میں عام طور سے بیٹا جو ہے اس کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، خاص طور سے بعض اوقات کچھ گھروں میں بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹا اگر اس طرح سے پیدا ہو جائیں بچے، یا ماں باپ چاہتے تھے کہ بیٹا ہو اور بہت ساری بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، تو ایسا ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بیٹا بہت اس سے محبت ہوتی ہے، اس کو پیار محبت میں بہت ہی جو ہے بگاڑ دیا جاتا ہے، اور بچیاں جو ہیں ان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ ظلم ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بیٹی اور بیٹا، اللہ بہتر جانتا ہے کون ماں باپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ بلکہ بیٹی کے بارے میں حدیث میں یقینی طور پر آیا ہے
कि अगर वालिदैन बच्चियों की अगर तरबियत सही तौर से करते हैं, उनकी जरूरियात को पूरा करते हैं, उनको अदब और तालीम देते हैं, तो फिर ये आखिरत में जहन्नम से बचाव बनेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बच्चों की तरबियत में फर्क नहीं होना चाहिए कि बेटे को बहुत ज्यादा अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं और बेटे को बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है और बेटे की तारीफ में पुल बांधे जा रहे हैं, हमारा गुड्डू तो ऐसा, हमारा गुड्डू तो ऐसा, जो भी मेहमान आता है उसके सामने तारीफ हो रही और बच्चियां बैठी हैं, ना उनका तस्किरा है, ना उनके साथ शफकत का सुलूक है, बल्कि बस वो घर में जैसे केटलियां होती हैं वैसी रखी हुई हैं। तो ऐसी बच्चे हैं, बच्चियों का कोई वैल्यू नहीं है घर के अंदर, तकिए और गद्दे और इस तरह से रखे हुए होते हैं और पापोश होते हैं, वैसी बच्चियां हैं। तो बेटा है, बेटा तो आंखों का तारा है, तो बेटे के साथ में एकदम ऊंचा मामला और बच्चियों के साथ में एकदम कमतर सुलूक करना ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहू सलातु बनातिन युवियहुन्ना व यकफियहुन्ना व यरहमहुन्ना फकद वजबत लहुल जन्नता अलबत्ता। जिसके तीन बेटियां हो जाएं, जिस आदमी के, जिस शख्स के जिसकी तीन बेटियां हों, वो उनको अपने घर में रखे और उनकी किफायत करें, जो चाहिए वो सब कुछ दे, किफायत करें, और यानी काफी चीजें उनको दें, काफी जितनी जरूरत थी उतना दे उनको, जो भी चीज चाहिए थी, खाना पीना दवाई वगैरह जो भी लिबास, और वो यरहमहुन्ना और उनके साथ रहम का सुलूक करें, उनको अपने घर में अच्छी जगह दे, उनकी किफायत करे और उनसे रहम का सुलूक करे, फकद वजबत लहुल जन्नत अलबत्ता, उसको यकीनन यकीनन उसके लिए जन्नत लाजिम हो गई, वो जरूर जन्नत में जाएगा। فقال رجل من القوم من بعض القوم, लोगों में से एक आदमी ने कहा, वस्नतैन या रसूल अल्लाह, यानी अल्लाह के रसूल आपने कहा तीन बेटियां हों, अगर दो बेटियां हों तो, यानी तीन नहीं हो तो क्या उसके लिए भी ये फजीलत है? वस्नतैन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल दो बेटियां हो तो भी? قال وثنتين, आपने कहा हां दो बेटियां हो तो भी, यानी दो बेटियां हो किसी के और वो उनके साथ में अच्छा सुलूक करे, उनको खिलाए पिलाए, अपने पास अच्छी जगह उनको दे, उनसे रहम का सुलूक करे, तो उसको जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। इमाम अल बुखारी ने अपनी किताब अल अदब अल मुफरद में इसको रिवायत किया है और शेख अल अल्बानी ने अपनी किताब सहीहा में इसको रिवायत किया है। तो इससे मालूम होता है कि बेटियों के साथ शफकत का सुलूक होना चाहिए, उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बेटा बेटी दोनों माँ बाप दोनों से मोहब्बत करें, दोनों से शफकत करें, दोनों की कद्र करें, दोनों के साथ नरमी करें, दोनों को अता दें और इस तरह से बच्चों की तरबियत करें। ये 10 बातें हैं जो बच्चों की तरबियत में वालिदैन को या सरपरस्त को, जो भी जिम्मेदार हैं बच्चों के, उनको याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमको सही समझ अता फरमाएं और बच्चों की तरबियत में हमको गलत बातों से बचने की तौफीक अदा फरमाएं। तो ये कुछ बातें थी, इंशाल्लाह हमारा जो अगला मौजू है इस्लाम और हमारा घर, ये हम अगले दर्स में करेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो याद रखने की हैं, इंशाल्लाह अगले दर्स में हम हमारा इस्लामी, अब बच्चों का तो हो गया, अब बड़ों का नंबर आने वाला है, तो अगले दर्स में हम ये देखेंगे कि पूरा घर दीनदार बने और घर का माहौल इस्लामी बुनियादों पर हो, इसके लिए क्या चीजें हैं, क्या चीजों का, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।